18 फरवरी दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फतल। पुलवामा में एक और चरमपंथी हमला, 7 लोगों की मौत। जम्मू में फिर कर्फ्यू लगाया गया।
कि हालात में काफी बेहतरी आई है, अभी भी पूरी तरह से नॉर्मलसी नहीं रिस्टोर हुआ है, इसका शाम में फिर से एक बार रिव्यू किया जाएगा।
कुलभूषण यादव मामले की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सुनवाई शुरू।
The trial by the military court in Pakistan in the facts and circumstances hopelessly fails to satisfy even minimum standards of due process.
सुनिएगा अपने पत्रों के उत्तर भी।
जी, सबसे पहले उपेंद्र ठाकुर लिखते हैं पूर्वी चंपारण बिहार से। उनका कहना है कि 7 फरवरी को वो दिन भर का कार्यक्रम सुन रहे थे और उसमें उन्होंने।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमले में 40 से अधिक जवानों के मारे जाने के बाद आज 4 जवानों की मौत हुई है। पुलवामा में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें 2 चरमपंथी मारे गए हैं। वहीं सेना के 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 1 डीआईजी और 3 सैनिक घायल हुए हैं। सऊदी के उप विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर ने कहा है कि सऊदी अरब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की कोशिश करेगा। इस्लामाबाद में अपने समकक्ष शाह महमूद कुरैशी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि दोनों देश अपने मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में सक्षम हैं। जुबैर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं और ये प्रतिनिधिमंडल कल भारत पहुंच रहा है। ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी के 7 सांसदों ने पार्टी के नेतृत्व के ब्रेग्जिट और यहूदी विरोधी विचारों पर मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया है। अब वह संसद में निर्दलीय सांसदों के रूप में बैठेंगे। लुसियाना बर्जर ने कहा कि वह लेबर पार्टी में बने रहने पर शर्मिंदा थी और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संस्थागत रूप से यहूदी विरोधी हो चुकी थी। एक अन्य सांसद क्रिस लेस्ली ने पत्रकारों से कहा कि पार्टी का धुर वामपंथियों ने अपहरण कर लिया है। क्रिस लेस्ली ने कहा कि लेबर पार्टी के नेताओं की रणनीति ने उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया।
The evidence of Labour's betrayal on Europe is now visible for all to see, offering to actually enable
लेबर के यूरोप से धोखे के सबूत अब सबके सामने हैं। सम्मेलन की नीति को एक तरफ रख दिया गया है। एकल बाजार में पूर्ण भागीदारी की कोई गारंटी नहीं है, समान लाभ नहीं है, लोगों के वोट के प्रति कोई झुकाव नहीं है। ये थे लेबर पार्टी के पूर्व सांसद क्रिस लेस्ली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मध्य यूरोप के 4 देशों के समूह ने इसराइल में होने वाले सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है। इसका कारण नाजी होलोकॉस्ट में पोलैंड की भूमिका के विवाद को बताया गया है। इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने पोलैंड की राजधानी वॉर्सो के दौरे के दौरान कहा था कि होलोकॉस्ट में पोल्स ने जर्मन्स की मदद की थी, जिसके बाद रविवार को पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो यरूशलम का दौरा नहीं करेंगे। इसराइल के कार्यकारी विदेश मंत्री इसराइल कॉट्स ने पूर्व प्रधानमंत्री इत्जक शामीर का जिक्र करते हुए कहा कि पोलैंड ऐतिहासिक तथ्य को खारिज करने की कोशिश कर रहा है।
כל בדיפלומטיה תמיד מנסים שאנשים לא יעלבו, אבל אף אחד לא ישנה את האמת ההיסטורית.
कूटनीति में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लोग अपमानित महसूस ना करें, लेकिन कोई भी ऐतिहासिक सच को बदला नहीं जा सकता। पोल्स ने नाजियों का सहयोग किया था और वास्तव में उन्होंने नाजियों का साथ दिया था। इत्जक शामीर ने क्या कहा था? उनके पिता की पोल्स ने हत्या की थी। ये थे इसराइल के कार्यकारी विदेश मंत्री इसराइल कॉट्स के शब्द। मालदीव के एक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। जज का कहना है कि मामला चलने के दौरान यमीन हिरासत में रहेंगे। यमीन ने आरोपों को नकार दिया है और कहा है कि ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है। अपने कार्यकाल में चीन के साथ नज़दीकी रिश्ते बनाने वाले यमीन को सितंबर में राष्ट्रपति चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा था। दिसंबर में यमीन से जुड़े कई बैंक अकाउंट को पुलिस ने बंद कर दिया था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि उन्हें उनके देश की 3 मुख्य पार्टियों के कंप्यूटर नेटवर्क पर साइबर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसियों को भरोसा है कि इसके पीछे एक विदेशी सरकार है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी हमलों में बढ़ोतरी से जहां सारे भारत में आक्रोश पाया जाता है, वहीं देश के पाकिस्तान के साथ संबंधों में भी तनाव बढ़ गया है। सिर्फ 3 दिन में सेना के ऊपर हुए बड़े हमले के बाद घाटी में स्थिति तनावपूर्ण है। पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में 40 लोगों के मरने के 3 दिन बाद पुलवामा में ही एक झड़प के बाद एक मेजर सहित 4 सैनिक, 2 चरमपंथी और 1 नागरिक मारे गए। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
आत्मघाती हमले में 40 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु के सिर्फ 3 दिन बाद आज सेना और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ के दौरान मेजर समेत 4 सैनिक मारे गए। झड़प में उस मकान का मालिक भी मारा गया जिसमें चरमपंथी छुपे थे। ये झड़प भी पुलवामा जिले में ही हुई जहां 14 फरवरी को आत्मघाती हमला हुआ था। पुलिस का कहना है कि झड़प में 2 चरमपंथी भी मारे गए। सेना और पुलिस सूत्रों के माध्यम से मिली खबरों के मुताबिक मारे गए चरमपंथियों में पाकिस्तानी चरमपंथी रशीद गाजी भी है, जिसके बारे में सेना कहती है कि उसी ने पुलवामा हमले की साजिश रचाई थी। पुलवामा हमले की गूंज भारत भर में सुनाई दी क्योंकि जगह जगह पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हुए और घाटी के दक्षिणी प्रांत जम्मू के साथ साथ भारत के कई राज्यों में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों को धमकाने और परेशान करने की खबरें आ रही हैं। जम्मू में कश्मीरियों के विरुद्ध प्रदर्शन और हिंसा के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। जम्मू के इंस्पेक्टर जनरल M.K. सिन्हा,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि हालात में काफी बेहतरी आई है, अभी भी पूरी तरह से नॉर्मलसी नहीं रिस्टोर हुआ है। इसका शाम में फिर से एक बार रिव्यू किया जाएगा और जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं, जो हमारी एजेंसीज हैं, उनका जो इनपुट आता है उसको मद्देनजर रखते हुए इस पर इसको ढील देने में या इसको उठाने के ऊपर विचार।
गौरतलब है 2 वर्ष से चरमपंथियों पर सेना का पलड़ा भारी था, लेकिन पुलवामा हमले ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। 3 दिन में 2 हमलों के दौरान भारतीय सेना को हुए जानी नुकसान के बाद भारत भर में मोदी सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वो जवाबी कार्रवाई करें। कल रात मीरवाइज उमर फारूक समेत 3 बड़े हुर्रियत नेताओं की सिक्योरिटी हटा दी गई और दक्षिणी कश्मीर में तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
देहरादून के 2 निजी कॉलेजों के हवाले से खबर आ रही है कि आने वाले नए सत्र में वहां किसी भी कश्मीरी छात्र छात्रा को दाखिला नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या है ये पूरा मामला? आखिर कौन है वो लोग जो नहीं चाहते कि कश्मीरी छात्र देहरादून के कॉलेज में पढ़ें? BBC संवाददाता भूमिका राय की रिपोर्ट।
कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए हमले के बाद से कई लोग इस हमले के प्रति अपना विरोध जता रहे हैं और प्रतिशोध की मांग कर रहे हैं। ये गुस्सा इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद और उसके पनाहगाह देश पाकिस्तान के खिलाफ तो है ही, साथ ही इस गुस्से की आग में देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी छात्र भी झुलस रहे हैं। आलम यह है कि उत्तराखंड के देहरादून में 2 कॉलेजों ने लिखित तौर पर कह दिया है कि वो आने वाले सत्र में किसी भी कश्मीरी विद्यार्थी को दाखिला नहीं देंगे। इन 2 कॉलेजों में से एक अल्पाइन कॉलेज के डायरेक्टर SK चौहान का कहना है,
पर उस वक्त माहौल एक ऐसा उन्होंने क्रिएट किया कि नहीं, आपको इसी वक्त जो है इसको जो है सस्पेंड करना पड़ेगा, और उस वक्त की स्थिति से बचने के लिए, उस माहौल से बचने के लिए इसके अलावा हमें कोई कारण और कोई चीज नजर नहीं आई और हमने उस बच्चे को सस्पेंड।
वही इस संदर्भ में जिस दूसरे कॉलेज का नाम आ रहा है वो है बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज में पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि आप खुद सोचें, जब एक साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र जमा होकर कोई मांग करेंगे तो आपके पास विकल्प ही क्या बचता है। लेकिन जब हमने छात्र संगठन ABVP के नेता शैलेश से बात की तो उनका कहना था,
किसी भी कश्मीरी छात्र को अगर देहरादून में वो एडमिशन लेता है या रहता है तो उसका उससे पहले पूरा सत्यापन अवश्य हो।
लेकिन ये सारा मामला शुरू कैसे और कहां से हुआ, इस पर अल्पाइन कॉलेज के डायरेक्टर SK चौहान ने बताया,
एक कश्मीरी छात्रा, उसने जो है अभी जो ध्यान है आपको कि अभी हमारे 40 से 50 जो है जवान जो है शहीद हुए, और इसी दौरान जो है 1 या 2 आतंकवादी भी जो है वहां मारे गए। तो इस कश्मीर की छात्रा ने एक आतंकवादी जो कश्मीर से बिलोंग करता था उस पे एक रेस्ट इन पीस और इंशाअल्लाह तुमको जो है क्या शब्द रहते हैं कयामत नसीब करे या कुछ करे, इस तरीके से लिखा, जो कि एक प्रथम दस्या जो है वो एंटी नेशनल जो है।
छात्र संगठन के नेता से जब हमने ये पूछा कि जिस तरह के नियम की मांग वो कश्मीरी विद्यार्थियों के दाखिले के लिए कर रहे हैं, क्या वही नियम देश के दूसरे कोनों से आए छात्रों पर भी लागू होंगे, इस पर वो कहते हैं,
मैम दिल्ली से आए छात्रों उसके लिए हमने ऐसा कुछ मतलब वेरिफिकेशन तो चलो ये आपका बात सही है ना कि सत्यापन हर किसी का होना चाहिए, लेकिन ये कश्मीर से आए छात्रों का सत्यापन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सामने आई इसलिए हमें ज्ञापन देना पड़ा।
लेकिन मौजूदा हालात पर रोशनी डालते हुए एसपी सिटी निवेदिता कुकरेती कहती है,
हम कोई भी इस तरीके की चीज नहीं होने देंगे जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन किया जा रहा है और यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है।
दाखिला नहीं देने वाले कॉलेजों में शामिल दोनों ही जिन दो कॉलेजों का नाम आ रहा है उनसे संबंधित अधिकारियों का कहना है कि ये वक्ती फैसला था और कश्मीर भारत का अंग है तो उसके छात्र देश में कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि फिर विरोध करने वालों को ये जवाब क्यों नहीं दिया गया।
देहरादून में कश्मीरी छात्रों के पढ़ने पर प्रश्न चिन्ह।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
मशहूर फिल्म अभिनेता कमल हासन की पार्टी मक्कल नीति मय्यम ने कहा है कि कश्मीर में जनमत संग्रह पर कमल हासन के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कमल हासन ने इस मौके पर कहा था, आज मुझे इस दिन पर शोक है क्योंकि मैंने अनुमान लगाया था कि एक दिन यही होने वाला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे कुछ और होने का अनुमान लगाना चाहिए था, जनमत संग्रह करें और लोगों को बात करने दें, उन्होंने ये क्यों नहीं किया। सवाल उठता है कि कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग क्या है, बता रहे हैं बीबीसी हिंदी के संपादक मुकेश शर्मा।
1947 में जम्मू कश्मीर के महाराज ने जब भारत के साथ रहने का फैसला किया तो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान दोनों के राज्य पर दावे को देखते हुए जनमत संग्रह या चुनाव के जरिए इसे तय करने का सुझाव दिया। 1949 में भारत और पाकिस्तान की फौजों के बीच संघर्ष के बाद राज्य का 2/3 हिस्सा भारत के पास रहा, इसमें जम्मू, लद्दाख और कश्मीर घाटी शामिल थे, 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और भारत तथा पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 3 प्रस्तावों में कहा कि जैसा भारत और पाकिस्तान के नेता तय कर चुके हैं पूरा राज्य किसके पास रहेगा इसका फैसला जनमत संग्रह से होगा। इसके लिए एक शर्त तय की गई थी, वो ये कि कश्मीर में लड़ने के लिए जो पाकिस्तानी नागरिक या कबायली लोग आए थे वे वापस चले जाएं। 1950 के दशक में भारत ने यह कहते हुए इससे दूरी बना ली कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह राज्य से नहीं हटी और साथ ही राज्य के भारतीय राज्य का दर्जा तो वहां हुए चुनाव के साथ ही तय हो गया। 1980 के दशक में कश्मीर घाटी में उग्रवाद बढ़ने के साथ ही चरमपंथियों और कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि वे कभी भी आत्मनिर्णय के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सके। इस तरह जनमत संग्रह की मांग फिर उठी। आगे चलकर भारत या पाकिस्तान के साथ चले जाने के अलावा एक तीसरे विकल्प राज्य की पूरी आजादी की मांग भी उठने लगी। पाकिस्तान लगातार जनमत संग्रह की मांग करता रहा है और भारत से वादे से पीछे हटने का आरोप लगाता है, मगर भले ही वो कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता हो उसने पूर्ण स्वतंत्रता के तीसरे विकल्प को स्वीकार नहीं किया है। वैसे जनमत संग्रह को लेकर राज्य के तीनों हिस्सों के सुर भी अलग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में घाटी में मुसलमान बहुसंख्यक हैं और उनकी मांग को राज्य के दूसरे हिस्सों में उतना समर्थन नहीं मिलता। लद्दाख की बौद्ध जनसंख्या ने कभी भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया है और न ही जम्मू के हिंदुओं ने। अब चूंकि राज्य में एक राय नहीं है इसलिए एक सुझाव ये भी दिया गया कि क्षेत्रीय आधार पर जनमत संग्रह किया जाए। जो लोग पूरे राज्य की आजादी का समर्थन करते हैं वे इस मांग को खारिज करते हैं क्योंकि इस तरह राज्य का औपचारिक विभाजन हो जाएगा, जबकि वे पूरे राज्य को एक स्वतंत्र क्षेत्र बनाना चाहते हैं।
जनमत संग्रह की मांग। पुलवामा में चरमपंथी हमले के विरोध में उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों में गुस्सा है और कुछ जगहों पर कश्मीरी लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालने के खिलाफ अब तक दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इस बीच घटना में मारे गए जवानों के अंतिम संस्कार में कुछ जगहों पर प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई है। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमले की घटना को लेकर लोगों का गुस्सा और उबाल अपने चरम पर है। जगह जगह सैनिकों के सम्मान में मोमबत्तियां जलाकर उनके लिए शांति प्रार्थनाएं हो रही हैं, तो दूसरी ओर लोग दुश्मनों को सबक सिखाने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया में इस मामले पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भी कई जगह मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक कश्मीरी छात्र को इसी सिलसिले में निलंबित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के पीआरओ उमर पीरजादा ने बताया,
ट्वीट आया है जो बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल है और फौरन इस चीज का संज्ञान लेते हुए एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे सस्पेंड कर दिया एज पर द स्टूडेंट कोड ऑफ कंडक्ट और यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसीज है, हम एक दो की वजह से इस यूनिवर्सिटी को बदनाम होने नहीं देंगे। ये लड़का जो है स्टूडेंट, ये बीएससी मैथमेटिक्स का था और ये इसे वीएम हॉल अलॉट हुआ था, ये कश्मीरी कश्मीर का रहने वाला है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने एक एडवाइजरी जारी करके कश्मीरी छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर के बाहर न जाने की भी हिदायत दे रखी है। 14 फरवरी को पुलवामा में चरमपंथी हमले में मारे गए 40 जवानों में 12 जवान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के थे। सरकार ने उनके परिवार वालों के लिए नौकरी और मुआवजे की घोषणा के साथ सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार की भी हिदायत दी थी और किसी मंत्री को उपस्थित रहने को कहा था, लेकिन कुछ जगहों पर प्रशासनिक उदासीनता भी दिखाई पड़ रही है जिससे लोग आक्रोशित हैं। वाराणसी के रमेश यादव के परिजनों का आरोप है कि उनके अंतिम संस्कार में परिवार वालों से कोई राय तक नहीं ली गई।
अधिकारी लोग लेगी ना, हम जान देंगे यहीं पर। क्या समझते हैं अपने आप को,
अपने मन से लेकर चले गए।
रमेश यादव के पिता श्यामराज यादव का कहना था कि वो लोग रमेश यादव के भाई का इंतजार करने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने जबरन अंतिम संस्कार करा दिया।
हमारी मांग पूरा नहीं हुआ है,
प्रशासन
इतना जबरदस्ती प्रशासन लेके भाग रहा है, हमारी बहू का बात नहीं सुन रहे हैं और उसके बाद हमारी बात भी नहीं, और जबरदस्ती लोग पकड़ के मैं खींच रहा हूँ, उसको खींच के भाग रहे हैं। लेकिन इतनी जबरदस्ती है, इतना जनता जुटा है, कोई सहमत है कि कोई जबरदस्ती है काम करने का, जाओ लेकर।
हालांकि कुछ देर बाद वहां केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा पहुंचे थे और लोगों ने शिकायत भी की।
मुझे आदेश हुआ है कि केंद्रीय मंत्री के रूप में भी मुझे यहां रहना है, हमारे अध्यक्ष हमारे मंत्री भी यहां पर साथ हैं, विधायक सभी को आदेशित हुआ है कि सब लोग हम इस दुख की घड़ी में परिवार तक पहुंचेंगे।
लेकिन श्यामराज यादव की बात फिर भी नहीं मानी गई। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में 4 दिवसीय सार्वजनिक सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों जिरह करेंगे। जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान का कहना है कि वो बलूचिस्तान में भारत की तरफ से जासूसी कर रहे थे, लेकिन भारत ने इसे इनकार किया है और कहा है कि वो एक भारतीय नागरिक हैं जिन्हें ईरान से अगवा किया गया था। भारत के प्रतिनिधि हरीश सालवे ने दलील दी है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा जाधव की सुनवाई कानूनी प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों को भी पूरा करने में नाकाम रही है और इसे गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
4 दिनों की कुल सुनवाई के पहले दिन भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा हास्यास्पद है, क्योंकि भारत के बार बार आग्रह के बावजूद पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक को बचाव के लिए वकील मुहैया करवाने की इजाजत नहीं दी। केस को अंतर्राष्ट्रीय अदालत के सामने रखने की पहल भारतीय विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव दीपक मित्तल ने की। जाने माने वकील हरीश सालवे ने भारतीय नागरिक का पक्ष रखते हुए अदालत से कहा,
The trial by the military court in Pakistan in the facts and circumstances hopelessly fails to satisfy.
पाकिस्तान सैन्य अदालत में जिस तरह से सुनवाई हुई और जिन हालात में हुई, उसमें इस तरह के मामलों में जरूरी न्यूनतम प्रक्रिया को भी नहीं अपनाया गया। ये वियना संधि की धारा 36 के खिलाफ है, इसलिए इसे गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। हरीश सालवे ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने सारा मामला बाद में बनाया है और पूरा केस सिर्फ जाधव के इकबालिया बयान पर निर्भर है।
Information subsequently made available by Pakistan establishes that a first information report.
पाकिस्तान ने बाद में जो सूचना मुहैया करवाई है उससे साफ हो गया है कि इस मामले में FIR तक 8 अप्रैल 2016 में दर्ज हुई। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं। उन्हें साल 2016 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तानी सैन्य अदालत में मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। पाकिस्तानी सरकार लंबे समय से भारत पर बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी समूहों की मदद करने के आरोप लगाती रही है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 10 अप्रैल 2017 को उन्हें जासूसी और दहशतगर्दी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान ने जाधव की पत्नी और माँ को उनसे जेल में मिलने की इजाज़त तो दी, लेकिन उस दौरान उन दोनों से चूड़ियाँ और मंगलसूत्र तक उतारने को कहा गया, जिसकी गूंज भारतीय संसद तक पहुंची और बड़ा हंगामा हुआ। बाद में भारत की अपील पर हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान से कहा था कि कुलभूषण को तब तक मौत की सजा न दी जाए जब तक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में दायर भारत की याचिका पर सुनवाई पूरी न हो जाए, जिसके बाद हालिया सुनवाई प्रारंभ हुई है। नीदरलैंड के शहर हेग में सुबह शुरू हुई सुनवाई कल तक के लिए टल गई है, लेकिन हालात किस कदर तल्ख हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में आमना सामना होने पर भारतीय पक्ष के मुखिया संयुक्त सचिव दीपक मित्तल ने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मसूद खान से हाथ तक मिलाने से इनकार कर दिया और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, हम शोकाकुल हैं, आतंकवादी देश से हाथ नहीं मिला सकते। कल पाकिस्तान मामले से जुड़े सबूत और दावे अदालत के सामने रखेगा। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
आज सोमवार है और आज आप सुनते हैं अपने पत्रों के उत्तर।
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और मेरे साथ स्टूडियो में हैं
सरोज सिंह जी। सबसे पहले उपेंद्र ठाकुर लिखते हैं पूर्वी चंपारण बिहार से। उनका कहना है कि 7 फरवरी को वो दिन भर का कार्यक्रम सुन रहे थे और उसमें उन्होंने चिट्ठियों में सुना कि किसी ने बीबीसी पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि काश मेरी उनसे मुलाकात हो पाती तो मैं इस बात पर चर्चा करता कि बीबीसी पक्षपाती कैसे हो गया।
देखिए, आपने पत्र लिखा, बहुत शुक्रिया आपका। और ये भी समझना ज़रूरी है कि हम इस समय एक ऐसे दौर में हैं जिसमें संतुलित विचारों के लिए जगह कम से कम होती जा रही है, और जब तक आप पसंद आने वाली बात करते हैं तब तक आप निष्पक्ष माने जाते हैं, और जैसे ही आप किसी दूसरी ऐसी कोई बात करते हैं जो लोगों को पसंद ना आए तो पक्षपाती हो जाते हैं। और ये हमेशा होता है कि दोनों तरफ से बीबीसी पर आज से नहीं ऐतिहासिक तौर पर आरोप लगते रहे हैं। हम इस पर बहुत ध्यान देने के बदले इस पर ध्यान देते हैं कि हमारी पत्रकारिता सचमुच निष्पक्ष हो।
आकाश राज नालंदा बिहार से लिख रहे हैं, रविवार को पटना के गांधी मैदान से पंकज प्रियदर्शी और नितिन श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत फेसबुक लाइव बहुत ही संतुलित लगा और बेबाक तरीके से पेश किया गया, जिसमें बिहार वासियों की राजनीतिक सोच और समझ को दिखाने की अच्छी कोशिश की गई।
बहुत शुक्रिया आपका। पटना के गांधी मैदान से पंकज प्रियदर्शी और नितिन श्रीवास्तव के इस फेसबुक लाइव को और भी बहुत सारे श्रोताओं ने पसंद किया है, आपका बहुत शुक्रिया।
अगला जो ईमेल है वो रॉबिन कुमार ने लिखा है, जगह अपने नहीं लिखा कि मैं बीबीसी का पुराना श्रोता रहा हूं बचपन से, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अपनी ट्रांसपेरेंसी को बीबीसी खोता जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी पर जो विवेचना थी उसमें इस बात पर बहुत ध्यान दिया गया कि कौन से फूल उनको पसंद थे और कौन से नापसंद थे, जबकि कश्मीर में इतना कुछ चल रहा था। उसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि बीबीसी के कार्यक्रम लीडर भी निडर भी में कितने कांग्रेसी चेहरों को हमने बुलाया और इतने भाजपाई चेहरों को।
सबसे पहली बात तो विवेचना की जो आपने चर्चा की है, यही वजह थी कि कश्मीर में इतना कुछ चल रहा था कि हमने विवेचना को शुक्रवार की जगह रविवार को प्रसारित किया। जहां तक इनका दूसरा सवाल है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा अपनी तरफ से गंभीर प्रयास था कि सभी दलों की महिला नेताओं को हम इस कार्यक्रम में शामिल करें। हमने उमा भारती को, जो कि भारतीय जनता पार्टी की मंत्री भी हैं, उनको आमंत्रित किया था, उन्होंने आने का वादा भी किया था, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने ये सूचना दी कि उन्हें ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ रहा है और वो दिल्ली में नहीं हैं, वो नहीं आई। मीसा भारती को हमने बुलाया था, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की सांसद हैं। तबस्सुम हसन को हमने बुलाया था, जो कि उत्तर प्रदेश से एकमात्र मुस्लिम महिला सांसद हैं। हमने आतिशी मरलिना को बुलाया था, जो आम आदमी पार्टी की हैं, और कविता कृष्णन को, जो कि वामपंथी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करती, लेकिन ये वो उन महिलाओं के नाम मैंने लिए जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में आने की सहमति दी थी, लेकिन उसके बाद वो किसी न किसी वजह से नहीं आए। लेकिन हमारा लक्ष्य यही था कि सभी तरह की राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व हो।
अगला जो ईमेल है वो है जंग बहादुर सिंह जमशेदपुर से लिख रहे हैं, और उन्होंने विवेचना की तारीफ की है। उनका कहना है कि रेहान जी की नई पुस्तक की समीक्षा से हमें नए पुस्तकों के विषय में जानकारी तो मिलती है। धन्यवाद रेहान फजल जी, और उन्होंने इंदिरा गांधी की विवेचना की काफी तारीफ की है।
ये वही विवेचना है थोड़ी देर पहले जिसकी आलोचना हमारे एक और पाठक कर रहे थे। ये हमेशा ही होता है कि हमारे कार्यक्रम, जाहिर है कि कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को नापसंद आते हैं, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है या जिनको बहुत ज़्यादा नापसंद होता है वही अक्सर पत्र लिखते हैं। हम दोनों तरह की राय का स्वागत करते हैं।
तो अगली राय बिल्कुल ही उसके उलट आ गई है। योगेश भागवत है, वो कहते हैं 40 साल से BBC सुनता आया हूँ, निष्पक्षता ही BBC की खासियत थी, वास्तव बोलना और बताना यही BBC था, लेकिन आज की आपकी BBC हिंदू विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी और घोर मोदी विरोधी है। इन्हें ये हमसे शिकायत है और वो बोल रहे हैं कि अब हम आपको सुनना बंद कर देंगे।
जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम एक बहुत पोलराइज, एक बहुत ही ध्रुवीकरण वाले समाज में रह रहे हैं, जिसमें या तो आप किसी पक्ष के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं। बीच वाली जगह एक तरह से ख़त्म हो गई है इस पूरी खींचतान में, और हम उसी जो थोड़ी सी थोड़ा सा बचा हुआ टापू है बीच का, वहीं हैं। हम आप तक समाचार पहुंचाते हैं और हम आप तक वो विचार भी पहुंचाते हैं जो अक्सर आप तक नहीं पहुंचती। हम आप तक उन लोगों की आवाज़ पहुंचाते हैं जो अक्सर आप तक नहीं पहुंचती, लेकिन मकसद हमारा आपको पूरी और सही तस्वीर देना है।
गौतम दत्ता हैं, किशनगंज बिहार से लिखते हैं, पुलवामा कांड पर BBC की लगातार की जा रही रिपोर्टिंग उन्हें अच्छी लगी। मनोहर लाल जी, शायद वो मोहन लाल जी लिखना चाहते थे, बहुत दिनों बाद लौट आए, सुखद लगा उनकी आवाज़ सुनना। आशा है राजेश जोशी, सारिका सिंह और सूर्यांशी पांडे की खनकती आवाज़ भी जल्द ही उन्हें सुनाई देगी।
बहुत शुक्रिया आपका पत्र लिखने का, और आपकी तारीफ हम मोहन लाल जी तक पहुंचा देंगे। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी तरह हमें पत्र लिखते रहिए। चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और अब नजर दौड़ाते हैं आज की खेल गतिविधियों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। शुरुआत करना चाहूंगी बैडमिंटन से। साइना नेहवाल ने PV सिंधु पर अपनी श्रेष्ठता कायम रखते हुए लगातार दूसरे साल नेशनल चैंपियनशिप जीत ली है। गत चैंपियन साइना ने शनिवार को ओलंपिक रजत पदक विजेता PV सिंधु को हराकर 83वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला सिंगल्स खिताब अपने नाम किया। पिछले साल नागपुर में भी इन दोनों के बीच खिताबी मुकाबला हुआ था, तब भी साइना नेहवाल ही चैंपियन बनी थी। साइना ने पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडल के मुकाबले में भी सिंधु को हराया था। दूसरी वरीयता प्राप्त साइना नेहवाल ने PV सिंधु को फाइनल्स में 21-18, 21-15 से मात दी। उन्होंने 44 मिनट में सिंधु को पराजित किया। और अब बात टेनिस की। बेल्जियम की एलिस मार्टिन्स ने विश्व की नंबर 3 टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप को उलट फेर का शिकार बनाते हुए कतर ओपन का खिताब अपने नाम किया। बेल्जियम की एलिस मार्टिन्स ने रोमानिया की सिमोना हालेप को 3 सेट तक चले कड़े मुकाबले में 3-6, 6-4, 6-3 से हराया। दुनिया की 21वीं नंबर की खिलाड़ी मार्टिन्स ने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। पहले सेट में एक समय स्कोर 3-3 से बराबर था, लेकिन इसके बाद हालेप ने लगातार 18 अंक हासिल करते हुए 1-0 की बढ़त बना ली। वहीं बेल्जियम की खिलाड़ी ने दूसरे सेट में दमदार वापसी की। इसी के साथ तीसरे सेट में मार्टिन्स ने दमदार प्रदर्शन किया और बिना कोई गलती किए खिताबी जीत दर्ज की। और अब जाने से पहले बात फुटबॉल की। आज FA क्लब में यानी फुटबॉल एसोसिएशन क्लब टूर्नामेंट में आमने सामने होंगी दो टीम्स, चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड। खेल समाचारों में आज इतना ही।
सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदायीन हमले में 40 से अधिक जवानों के मारे जाने के बाद आज 4 जवानों की मौत हुई है। सऊदी के उप विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर ने कहा है कि सऊदी अरब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की कोशिश करेगा। ब्रिटेन के विपक्षी लेबर पार्टी के 7 सांसदों ने पार्टी के नेतृत्व के ब्रेग्जिट और यहूदी विरोधी विचारों पर मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया है। मध्य यूरोप के चार देशों के समूह के इसराइल में होने वाले सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है। इसका कारण नाजी होलोकॉस्ट में पोलैंड की भूमिका के विवाद को बताया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।